باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ صلوات علیہ فرما دیجیے محمد علی محمد۔ ایران محترم، جیسا آپ کے علم ہے، کل ایک انتہائی المناک سانحہ ہوا، اور ڈیوٹی کے دوران، میں تو اس کو یہ کہتا ہوں، فریضہ انجام دیتے ہوئے ہمارے جوان فوج کے، جس میں افسر بھی ہیں اور سپاہی بھی ہیں، وہ شہید ہو گئے۔ پرسوں لاپتہ ہوا تھا وہ ہیلی کاپٹر، کل اس کا معلوم ہوا۔ تو بہرحال ڈیوٹی پر تھے اور سیلاب زدگان کی مدد کرنے میں مصروف تھے، ظاہر اپنا فریضہ انجام دے رہے تھے نا، جو فریضے کو انجام دیتے ہوئے اپنی جان سے چلا جائے، شکار ہو جائے موت کا، تو اس کے لیے بھی ہماری یہاں روایات میں کیا ہے، شہادت کا درجہ ہے، شہید ہے، اپنی ڈیوٹی کر رہا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ مظلوموں کی مدد کر رہا تھا، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان تمام شہیدوں کے لیے، وہ جو ہمارے سپاہی کل شہید ہوئے، جس میں جنرل بھی ہے اور ایک بیچارہ نائک بھی ہے، سپاہی بھی ہے، ان سب شہدا کے لیے اور اپنے ملت کے بھی تمام شہدا کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ، ایک سلوات عنایت فرما دیجیے محمد علی محمد پر۔ بات یہ کہ میں ہمیشہ سے ایک بات آپ سے کہتا چلا آیا ہوں، برسوں سے جب سے مجھے یاد ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا حکومتوں سے جھگڑا ہوتا ہے، افراد سے نہیں، ہے نا، افراد سے نہیں۔ افراد تو ہر جگہ اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، ہمارا جھگڑا ہوتا ہے حکومتوں کے ساتھ، محافظوں کے ساتھ نہیں۔ محافظوں کو تو بیچاروں کو آگے کر دیا جاتا ہے نا، ہمارے سامنے، ہے نا، ہمارے سامنے ان کو کر دیا جاتا ہے، لیکن ہمارا جھگڑا کس سے ہے؟ ہم ہمیشہ ٹکراتے ہیں حکومتوں کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ، اب یہ تو جو بھی آئے گا اس کے ساتھ۔ یہ ہمیشہ بات ذہن میں رکھا کیجئے کہ ہمارا ان کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے۔ جیسے میں کے الیکٹرک کو جو روزانہ سلواتیں بھیج رہا ہوں، تو کیا کے الیکٹرک میں ہمارے بھائی ملازمین نہیں ہیں کیا؟ ہیں نا، آپ کے بھی ہمارے بھائی بہن ہیں، لیکن جب میں ان پر سلواتیں بھیج رہا ہوں تو مراد وہ تھوڑی ہوتے ملازمین بیچارے، ان کا کیا قصور ہے؟ میں جب سلواتیں بھیج رہا ہوتا ہوں تو کن پر بھیج رہا ہوتا ہوں؟ وہ جو یہودیوں کے ایجنٹ بیٹھے ہیں ہمارے اوپر، ہے نا، وہ جو ان کے بڑے بڑے افسران، ظاہر آپ یہ دیکھیے، میں ایک پروگرام ٹی وی میں دیکھ رہا تھا، ابھی دو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے عرض کر دیا جب تک ان کا قبلہ درست نہیں ہوگا میری زبان چلتی رہے گی اور ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے نا۔ ایک ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا اور یہ اسی کے اوپر چل رہا تھا، ٹاک شو کے الیکٹرک کے اوپر، مسائل پر، تو ایک فرعون نما انہیں نے آدمی بھیجا ہوا، ان کا نمائندہ، جیسا نام تو میں بھول گیا بدبخت کا، اچھا ہی ہوا بھول گیا، تو وہ بیٹھا ہوا تھا وہاں فائلیں وائلیں لے کے، اور دوسرے کرنے والے کے پبلک کو، یہ پبلک، میں حیران یہ ہو رہا تھا کہ وہ اتنا بدبخت تھا کہ اس کو اتنا بتایا گیا کہ لوگوں کا یہ حال ہے، لوگوں کا برا حال ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو ان کے چولہے نہیں چل رہے، 15,000 تنخواہ، 8,000 روپے تمہیں، مگر وہ ایسا فرعون بن کے بیٹھا ہوا تھا اور وہ فائلیں کھول کھول کے بتایا جا رہا، ٹکا ٹک یہ ہے یہ ہے۔ بھائی حکومت کے ساتھ ہے نا تیرا، عوام نے کیا بگاڑا ہے؟ یہ ایسے بے حس لوگ ہوتے ہیں، اب اسے پوچھو بھائی تیرا پیکج کیا ہے، اس ملون سے کوئی پوچھے، اب بھی سارے چینلز تک میری آواز جائے گی، کبھی ان کو بٹھاؤ اور ان سے پوچھو تمہارا پیکج کیا ہے، کتنی تمہاری تنخواہ ہے، اور تنخواہ کے علاوہ تمہارے الاؤنسز کیا ہیں، تمہاری مراعات کیا ہے۔ یقین مانیے ایک ایک افسر کا پیکج لاکھوں کا۔ اب اس بدبخت سے دوسرا سوال کرو کہ تو مراعات لے رہا ہے، یہ لاکھوں روپے تنخواہ کے لے رہا ہے، گاڑی تجھے ملی ہوئی ہیں، ڈرائیور تجھے ملے ہوئے ہیں، ٹیلی فون تیرا فری، بجلی تیری فری، موبائل تیرے فری، ڈیزل تیرا فری، یہ کس کے پیسوں سے تو لے رہا ہے؟ کبھی سوچا؟ किस्मत के मारो 22 करोड़ इंसानों, कभी सोचा ये किसका पैसा है जो उसको मुराद दी जा रही है? इन बदबख्तों को, उनको देने के लिए लाखों करोड़ों पैकेज है तुम्हारे पास। किस लिए ये पैकेज दिया जाता है? ताकि वो हमें ज़िबह करें। इसलिए उनको ये मुराद दी जाती है कि जितना इनके गर्दन पे छुरी चला सकते हो चलाओ, वरना पूछे ना चैनल के लोग बिठा के इनका क्या पैकेज है, तो क्या जवाब देगा? क्योंकि मैं के इलेक्ट्रिक की खिदमत करता हूं, के इलेक्ट्रिक का खिदमत गुजार हूं। एक मलून भी ये नहीं कहेगा कि मैं आवाम की खिदमत करता हूं, वो एक ही जवाब देगा कि मैं इनका नौकर हूं, मैं के इलेक्ट्रिक का मुलाजिम हूं, ये मुझे तनख्वाह देते हो, तनख्वाह किसके पैसे से देते हैं बदबख्त? हमारा खून निचोड़ा जाता है तो तुम्हें मिलता है। इन गरीबों का, योरंगी कोरंगी कस्बा बनारस यहां के रहने वाले गरीब लोग, जिनकी तनख्वाहों से ज्यादा तू बिल भेजता है, और ये बिल भेजने के तुझे लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है। समझ में आई हमारी बात? ये तो चलेगा, रोज चलेगा, ये अपनी हरकतें नहीं छोड़ेंगे। मैं अपनी आदत क्यों छोड़ दूं? मैं अपनी आदत क्यों छोड़ दूं? एक बात और, सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मैं समझ रहा था लाइट आ रही है, उनका नहीं, नहीं लाइट वाइट नहीं आ रही, जनरेटर चल रहा है, बड़ा जनरेटर लाके लगा दिया गया। अब आइए आपको मासी की बात बताऊं, चंद साल पहले, 40 साल तो मुझे हो गए ना मिंबर पे बैठते हुए, मेरी मिंबर पे बैठने की उम्र है 40 साल, उसके अलावा नहीं बताऊंगा कितनी उम्र है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। बस इतना समझ लीजिए कि कायदे आजम के जमाने का नहीं हूं भाई। तो होता ये था, एक तरीका था, एक दस्तूर था, अब भी है, कि आखिरी मजलिस में हर जाकिर, हर खतीब, हर आलिम मेरे समेत, यानी मुझ समेत, शुक्रिया अदा करता था, है ना, शुक्रिया मैं खुद अदा करता था, तमाम इदारों का, स्काउट्स का, पुलिस का, रेंजर्स के सिपाहियों का, है ना, सारे महकमों का, और यकीन मानिए KESC का, बिजली वालों का शुक्रिया अदा किया जाता था। क्यों? जितनी मरकजी मजालिस होती थी ना, वहाँ इनकी गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, ट्रक खड़े रहते थे, कि कहीं आज़ादारी डिस्टर्ब ना हो जाए। और वो क्या होता है, बूस्टर कहलाता है, पता नहीं क्या कहलाता है, बड़े जनरेटर जो इनके होते हैं, बहरहाल कुछ कहते होंगे उसका, उसका टेक्निकल नाम है कुछ, तो बड़े बड़े जनरेटर लेके खड़े होते थे, और उनके आदमी भी खड़े होते थे ड्यूटी पर, मेरी मजलिस, मैं गवाह, और सब बड़ी मजलिसों में खड़े होते थे, कि अगर खुदा ना करे कोई फॉल्ट आ जाए तो फौरन वो वहीं से जोड़ते थे कनेक्शन, ताकि आज़ादारी डिस्टर्ब ना हो। और फिर बताऊँ मैं आपको, जब आखिरी मजलिस में हम उनका शुक्रिया अदा करते थे, तो वहां से जवाब आता था कि आप हमारा शुक्रिया अदा ना किया कीजिए, ये इमाम हुसैन की आजादारी है और हम भी इमाम हुसैन को मानते हैं। तो ये तो तय हो गया कि पहले वाले इमाम हुसैन को मानते थे, ये बदबख्त यजीद को मानते हैं। ये तो तय हो गया ना, ये तो तय हो गई एक बात, कि पहले वाले कहते थे कि हमारा शुक्रिया अदा ना किया कीजिए, हम भी इमाम हुसैन को मानते हैं, हम भी ये खिदमत अंजाम देते हैं फर्श अदा की, हमें भी सवाब मिलता है, कि ये मजालिस में कोई खलल वाक़े ना हो तो हमारा शुक्रिया अदा ना किया कीजिए आप, हम भी हुसैन के चाहने वाले हैं, हम भी हुसैन के मानने वाले हैं। और अब वाले तो तय हो गया ना कि पहले वाले हुसैनी थे, ये वाले यजीदी हैं। एक सलवात भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। चलिए तो हिस्सा हुआ इनका इसाले सवाब, है ना। अब हम अपने मजमून की तरफ आते हैं, बुलंद आवाज से एक बार और सलवात इनायत फरमा दीजिएगा। बस बात हो रही है इमामत दर कुरान, आज इमामत की अलामात पे बात करेंगे। हमने अब तक मानी बताए ना कि कितने मानी हैं इमाम के, किस किस माना में आया है, अच्छे माना में भी है, बुरे माना में भी है, बहुत अच्छी इमामत आम्मा भी है, खासा भी है, हर तरह की है, ठीक। और यहाँ तक आया कि लड़ो इनसे, कुफर के इमामों से लड़ो, शैतान के औलिया से लड़ो, इन लोगों से लड़ो, उनके लिए औलिया का लफ्ज़ भी आया, इमाम का लफ्ज़ भी आया, कुरान में सब कुरान। बस इमाम की अलामत क्या है भाई? हम कहते हैं ना इमाम मासूम, इमाम कितने बारा है, हमारे बिरादरान के भी इमामत है, मगर हमारे यहाँ उसूल दीन में क्यों है? वहाँ उसूल दीन में नहीं है, वहाँ फरू दीन में है। क्यों? वहाँ इमामत एक आम माना में है। कभी आपस में बैठ के तय कर लो, जो सबसे ज़्यादा काबिल हो उसे इमाम बना दो। हम कहते कि नहीं, ये इमामत खासा जो है ये मनसब अल्लाह देता है। आज वहीं से लेके चलेंगे आपको। ये मनसब कौन देता है? ये तो अल्लाह देता है। अल्लाह जिसको इस काबिल पाएगा इम्तिहानात की मंजिल में, ये भी ऐसे नहीं देता। अगर ऐसे ही किसी को दे दे तो भाई दूसरा गिला करेगा क़यामत के दिन, मबू तूने इमाम बनाया मुझे बना देता मैं भी बन जाता। तो उसमें उसका कमाल तो नहीं होना जो इमाम बना, वो तो अल्लाह ने बना दिया ना। नहीं, उसका कमाल क्या है? उस मंजिल पर आएगा, इम्तिहान देते 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 देते। अंबिया की मिसालें दे चुका ना मैं आपके सामने पहले, कि जब तक इम्तिहान की मंजिल में पूरा नहीं उतरेगा अगला मनसब, उससे आगे वाला मनसब नहीं मिलेगा। इम्तिहान शर्त है, उसके बगैर कुछ भी नहीं। सुन्नत इलाही है, इम्तिहान के बगैर ईमान की मंजिलें नहीं देता। इम्तिहान के बगैर अबू जर को मंजिल नहीं मिलती। इम्तिहान के बगैर सलमान फारसी को मंजिल नहीं मिलती। इम्तिहान के बगैर मिकदाद को मर्तबा नहीं मिलेगा। इम्तिहान के बगैर मीसम को वो बुलंदी नहीं मिलेगी। इम्तिहान के बगैर अम्मार को मर्तबा नहीं मिलेगा। इम्तिहान के बगैर अंसार हुसैनी को वो अबदी मकाम नहीं मिलेगा। यानी आम मोमिन हो, नबी हो, पैगंबर हो, इमाम हो, जो इम्तिहान की मंजिल में जितना आगे बढ़ेगा उसका मनसब भी उतना ही बड़ा होता चला जाएगा और उसका जिक्र भी वैसे ही फैलता चला जाएगा। अब अली इब्ने फज़ाल इब्ने शाज़ान, और कहीं अली इब्ने फजल भी, क्योंकि फजल इब्ने शाज़ान आठवें इमाम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के साहबी हैं, उनके साहबी अली इब्ने फजल उनके बेटे। वो सवाल जवाब कर रहे थे इमामत के बारे में, पूछा इमाम से, आठवें इमाम से, कि फर्जंद रसूल ये इमाम को पहचाना कैसे जाया? मैंने जैसे सवाल रखा ना शुरू में, कैसे पहचाने भाई, ये भी इमाम, ये भी इमाम, ये भी इमाम, ये भी इमाम, वो इमामत खासा को पहचाना कैसे जाए कि ये इमाम है? एक बात तो हमने बता दिया ना कि इमाम का माना लुगत में पेशवा, रहबर, ये सब है, और दीनी लुगत में, शरी लुगत में, कि जो दीन का मुहाफिज हो, दीन की हिफाजत करे। रसूल के बाद जो दीन की हिफाजत करेगा वही इमाम कहलाएगा। रसूल की हयात में तो कोई इमाम नहीं कहलाया ना रसूल के बाद, उधर के हों, इधर के हों, कहीं के भी हों, बाद में आए सब। बस इमामत खासा क्या है? जो अल्लाह बनाता है, जो रसूल बनाता है। तो फरमाते मासूम लिल इमाम अलामात, इमाम के लिए कुछ अलामतें हैं, उन अलामतों को देख लेना। वो अलामतें नजर आ जाएं, अलामत नजर आ जाएं, वही इमाम है। यकूनु अअलमुन नास, इमाम की पहली सिफत यह है कि जितने भी इंसान होंगे उन सबसे बड़ा आलिम होगा। आलम उन्नास का क्या मतलब? किसी सवाल के जवाब में ना नहीं करेगा, किसी सवाल के जवाब में यह नहीं कहेगा कि मुझे कोई इल्म गैब थोड़ी है। इमाम की पहचान यह है कि वो ये नहीं कहेगा मुझे कोई इल्म गैब नहीं है। वो कहेगा नहीं, इससे भी आगे की पूछना चाहते हो तो वो भी पूछ लो। अभी मिसालें दे देंगे, अभी मिसालें दे देंगे, लेकिन पहले रिवायत तो पूरी करें ना। पहली सिफत क्या है? यकूनु आलमुन्नास व अहकमुन्नास, इंसानों में सबसे बड़ा फैसला करने वाला यह है इमाम, इमाम खासा। और लोग फैसले नहीं करते थे, फिक्र की किताबें लिख दी, सब लिख दी, मगर काजी कोई और हुआ करता था। इमाम कौन है कि जहां हाकिम वक्त भी जब किसी मसले में उलझ जाए तो माने या ना माने फैसले के लिए उसी को बुलाएगा जो अहकमुन्नास होगा। फैसले के लिए किसे बुलाएगा? उसी को जो अहकमुन्नास, इंसानों में सबसे बड़ा फैसला करने वाला इमाम के रहा। अब सबसे बड़ा फैसला करके करने वाला ढूंढ के लियाओ, तूले तारीख में लियाओ, कहाँ कहाँ इश्तिबाहात हुए, कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई काजियों से, चाहे दानिश्ता चाहे नादानिश्ता, है ना, हुई ना। बाद में कह देते भाई जी गलती हो गई है, जुडिशरी गलती हो गई, अब भी हो रहा है ना, दानिश्ता या नादानिश्ता, क्या करना है क्या नहीं करना, सब आपके सामने सुबह शाम चला आ रहा है। खैर छोड़िए, हम उस तरफ कहाँ जाएं, हमारे और बहुत सारी बातें करने को है, वहां पे देख लेंगे कौन कौन बीच में आ रहा है, उसको निपट लेंगे। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, ठीक है ना। लेकिन अहकम उन्नास यानी उसका फैसला, आखिरी फैसला, उसका फैसला आखिरी फैसला, उससे बड़ा कोई फैसला करने वाला नहीं होगा, कोई उससे बड़ा फैसला करने वाला नहीं होगा। क्यों? अहकम उन्नास व अतकन नास, इंसानों में सबसे ज्यादा मुत्तकी, इंसानों में कैसा मुत्तकी, इंसान होंगे मुत्तकीन, वो होगा इमामुल मुत्तकीन। खलीफतुल मुस्लिमीन बने, अमीरुल मोमिनीन बने, किसी की जरूरत हुई इमामुल मुत्तकीन अपने साथ लगाता। अतकन नास यानी हर जमाने में जितने भी मुत्तकी होंगे वो उनका इमाम होगा। कुरान ने दुआ नकल की है ना, वल्लज़ीना यकुलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रियातना कुर्रता आयुनी वज़अलना लिल्मुत्तकीना इमामा, सूरह फुरकान की 74वीं आयत नकल हुई ना, कि कुछ लोग हैं जो अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग रहे हैं, पालने वाले कुछ अच्छी अजवाज दे दे, कुछ अच्छी औलाद दे दे, उन्हें हमारी आंखों की ठंडक बना दे और हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे। तो लाओ ना ढूंढ कर, ये कौन है मुत्तकीन का इमाम, कहां है ये मुत्तकीन का इमाम। इस पे तो हमने मजालिस पढ़ दी, लेकिन एक इशारा कर दिया, अतकन्नास यानी तमाम इंसानों में मुत्तकी तरीन। तो कौन होगा मुत्तकी तरीन? सब है मुत्तकी, जैसा भी हो मुत्तकी, वो क्या होगा? इमामुल मुत्तकीन, वो होगा इमामुल मुत्तकीन। कैसे? जैसे इब्ने अबील हदीद मोतजली ने जब तशरीह की इमाम के मकाम की, इमाम के कलाम की, अफसहुन्नास एक ही सिफत है, फसीह तरीन यानी उसका बयान सारे बयानों पर हावी। तो लाओ ऐसा बयान किसका? हम नहीं कहते नहजुल बलागा, हम नहीं कह रहे। सुनो इब्ने अबील हदीद मोतजली से, वो ये कहता है कि जितने भी फसीह तरीन कलाम है यानी हर जमाने के जितने भी बलीग लोग हैं, फसीह लोग हैं, फसाहा बुलागा, कहते हैं इन सब का कलाम अली के सामने ऐसे है जैसे सोने के सामने मट्टी। फसीह तरीन लोगों का कलाम, कहते हैं कि फसीह तरीन लोगों का कलाम कैसा होगा अली के सामने? सोने के सामने मट्टी का ढेर, मट्टी का ढेर। इसीलिए कहा गया ना, तहता कलामुल्लाह फौका कलामुल बशर, अल्लाह के कलाम के बाद और इंसान के कलाम से वाला कोई वहां तक पहुंच नहीं सकता। कहा इमाम के, इमाम फरमाने अभी खत्म नहीं हुआ लमात, ये है इमाम, इमाम फरमाने ये होगा अहलबुन नास हलीम तरीन, इंसानों में बुर्दबार तरीन। कैसा बुर्दबार? सख्तियां कहीं तक पहुंच जाएं, हिल्म के दामन को हाथ से नहीं छोड़ेगा। इसमें एक एक सिफत पे तफसील है, लेकिन नहीं, हमारा वक्त क्योंकि महदूद है ना, और अभी मैं और आगे भी बढ़ के जाना है, तो अभी इस तरह से इशारे करते चले जा रहे, बस अहलमुन्नास, आलमुन्नास, अहकमुन्नास, अतकन्नास, असखन्नास, इंसानों में उससे बड़ा सखी कोई नहीं होगा, सखी तरीन होगा असखन्नास, कोई उससे बड़ा सखी इंसानों में नहीं होगा। सबसे सखी, कैसा सखी? किसी ने आके तारीफ की ना हातम ताई की, याद रखिएगा हातम ताई बेशक मुसलमान नहीं, क्योंकि उस वक्त इस्लाम आया नहीं था, मसीही था, बनी ताई का था ना, बनी ताई का भी हमने पढ़ा है पिछले साल कहीं अशरे सानी में, अदी इब्ने हातम के बाब में जब उनका तफसील पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था हातम ताई के बारे में। तो जाहिर है कि एक सिफत तो थी ना उसमें, सिफत क्या थी? सखावत की, सखावत। और आज तक जरूर मसल है, हातम ताई का मतलब सखी थोड़ी है, सखी तो नहीं है हातम ताई का मतलब, लेकिन इतना बड़ा सखी था कि सखावत का मुतरादिफ हो गया उसका नाम। अब अगर कोई सखावत करता नजर आए तो कहते क्या हातम ताई हो गया भाई ये तो, है ना। हालांकि हातम ताई का माना सखी नहीं है, यूं समझा दें कोई जान को आपकी मुसीबत बन जाए तो कहते जान को हिटलर हो गया, तो हिटलर का माना थोड़ी है चिमट जाना जान में, लेकिन मुहावरा बन जाता है बाज़ुकात, अच्छा या बुरा किसी भी माना में है। जैसे मैंने अभी कहा ये यजीद थोड़ी है के इलेक्ट्रिक, लेकिन सिफत यजीदों वाली है, सिफत किसकी है? तो मैंने कह दिया यजीदी, सिफत यजीदों वाली है ना, तो मैंने कहा यजीदी के इलेक्ट्रिक को, मुलाजिमों को नहीं कहा मैंने, पहले अर्ज कर चुका हूं बार बार, वो तो बेचारे हमारे आपके बहन भाई है ना, भाई बंद है, वो मुलाजिम करते हैं, मजदूर है, उनका क्या बेचारों का, वो तो आपकी तरह वो भी बेबस है, वो भी मजबूर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ ना जो पर यजीदी बैठे हैं। बस कैसा सखी कि हातम ताई ऐसा सखी था कि कोई 12 दरवाजों से आता था, उसके 12 दरवाजे थे। ये रिवायात हैं, कोई तारीखी हकीकत है नहीं है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हिकायात इनको कहा जाता है, हिकायात, ये हिकायात नकल हैं। तो हिकायत में कि जनाब 12 दरवाजे थे, सवाली एक दरवाजे से लेके जाता था, दूसरे पे, तीसरे पे, हर दरवाजे से उसको मिलता था। मौलाना ने कहा बहुत अच्छी बात है, अच्छा आदमी था, वाकई सखी था, लेकिन एक ही दरवाजे से इतना क्यों नहीं दे देता था कि उसे 12 दरवाजों पे जाने की नौबत ही ना पड़ती। एक ही दरवाजे से इतना दे देता। अस्खन्नास यानी हातम ताई भी इमाम की सखावत के सामने, ये तो मसाइब के बाब में बताऊंगा ना कि इमाम कैसा सखी होता है। अगर इतना बड़ा सखी ना होता तो दीन पे इतना बड़ा एहसान कैसे कर देता, कौन लुटा सकता था ये सारी चीजें कायनात पे, जिनका वजन भारी हो वो सब चीजें इमाम ने लुटा दी अल्लाह के लिए। इसलिए वही इमाम है जो राजियतम मर्जिया की मंजिल पर है। सिर्फ अल्लाह राजी नहीं हुआ बल्कि अल्लाह ने सखावत के बदले में जो दिया इमाम भी उस पर राजी हो गया। बराबर की बात है, राजियतम मर्जिया की तशरी सुनते रहते मजालिस, मौका मिलेगा कर देंगे, लेकिन अभी और बात को आगे बढ़ाना है। अफसोन्नास अस्खन्नास अबदुन्नास, इंसानों में सबसे बड़ा इबादत गुजार होगा। अब देखिए सारी सिफात जमा हो रही है इमाम की अलामत बताए, हर इमाम में ऐसा तो नहीं है दुनियावी इमाम में कही है इमाम, और फिर एक सिफत ऐसी जिसने सब बाकियों को अलग कर दिया। आबदुन्नास तो समझ में आ गया ना, इबादत गुजार ऐसा कि जब मेहराब इबादत में खड़ा हो तो रीशे मुबारक आंसुओं से तर हो जाए और ऐसे हिचकियां ले रहा हो, ऐसे तड़प रहा हो जैसे बिच्छू का डसा हुआ। रिवायात में यही है भाई, आपको अच्छा लगे वो लगे, रिवायात यही है। आजकल माहौल ऐसा हो गया कि जरा सी कोई ऐसी रिवायत पढ़ो तो मुंह बन जाते हैं लोग, तो बना करें भाई, तुम्हारे मुंह बनने से मैं सही बात करना थोड़ी छोड़ दूंगा। खैर जनाब आगे चलिए। अशजाउन्नास, इंसानों में बहादुर तरीन। अब देखिए आलिम होगा, होते हैं आलिम, लेकिन मैदान के लोग तो नहीं होते, मैदान में जाके तो नहीं लड़ सकते, बंदूक तो नहीं चलाते, आलिम है बैठे हुए, ठीक है आलिम, फकीह है, सारी सी बात है, मगर ये सारी सी बात नहीं है। और किसी मैदान का है तो दूसरा मैदान खाली है, सारी सिफात नहीं है कि इबादत के मैदान में भी आबदुन्नास यानी उस जैसा कोई इबादत गुजार ना हो, कोई ना उस जैसा। और मैदान में कैसा हो, इल्म में कैसा हो, इल्म में उससे बड़ा कोई आलिम नहीं, मैदान में उससे बड़ा कोई शजा नहीं। ये तो रिवायत है, रिवायत पूरी करते हैं फिर आयत लाते हैं, पहले रिवायत पूरी कर दें, ये तो भी रिवायत है। लोग कहेंगे आप कहते हैं कुरान, अभी तो रिवायत पढ़ रहे हैं आप, हाँ रिवायत पूरी तो कर लू ना। यलदु मख्तूनन वयकूनु मुताहिरन, इसकी पैदाइश पाकिजगी ही पाकिजगी होगी, तहारत ही तहारत। बड़े एहतियात से मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है, समझ गए आप, क्योंकि मासूम के मनसब का तकाजा ही है। अब कोई सुनेगा मेरी मजलिस कहे आपने लफ्जी तर्जुमा नहीं किया, तो मैं खुद कह रहा हूं कि मैंने लफ्जी तर्जुमा नहीं किया, हद्द अदब है, मेरे मौला का हद्द अदब है। लिहाजा कैसे हो सकता है कि मुझ जैसा एक गुनाहगार, एक अदना सा तालिब इल्म, और कर देते लोग बैठ के तर्जुमा मिंबर पे। मैं हमेशा कहता हूँ कि नहीं, हद्द अदब, हद्द अदब, लफ्जी तर्जुमा बाज चीज़ों का नहीं होता। बस कितना बेहतरीन तर्जुमा है कि इमाम जिसकी विलादत पाकिजगी ही पाकिजगी, जो ताहिर व मुताहिर दुनिया में आता है, यूं समझ लीजिए आप। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। यकूनो यकूनो मुताहरन, और सिफत वयरा खल्फे ही कमा यरा मिन बैन यदै, एक इमाम की सिफत यह है कि पुष्ट पर भी ऐसे ही देख रहा होगा जैसे सामने देखता है, यानी उसकी निगाहें हर तरफ हैं। ये ना समझना आप सो रहा है तो कुछ नहीं मालूम, मैं पीछे खड़ा हूं तो नहीं मालूम, करते थे ना पीछे खड़े होकर हरकतें, नकल उतारते थे, जिनके लिए कुरान ने जिन पर लानतें भेजी, जिनके लिए कहा गया इन्ना शान्या का होवल अबतर, ये जिनको कहा गया, बड़े बड़े नाम हैं, डरता हूं नाम लेते हुए कोई रिश्तेदार ना निकल आए कि मेरे परदादा को गाली दे दी, थाने जा रहा हूं, हाँ पता नहीं भाई, पता नहीं। हालांकि खुद ही तफसीर में भी लिखा कि ये फला फला आदमी थे और उसका बेटा था मरवान मलून और इसका बाप। अब तो ले दिया मैंने नाम, अभी तक इसका कोई रिश्तेदार पैदा नहीं हुआ। मुमकिन है थोड़े दिन में जब यजीद के पैदा हो गए तो इसके भी पैदा हो जाएंगे भाई। पता नहीं है लोगों का कब किससे रिश्ता जोड़ बैठे हैं हमारी दुश्मनी में। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। चलिए जनाब बात को आगे, एक बार और सलावात भेज दीजिएगा मोहम्मद आले। आइए, नकले उतारते थे ना पीछे तो समझते थे अल्लाह के रसूल को मालूम नहीं है। अल्लाह के रसूल को मालूम होता था, अब तर का ताना देते थे पीछे पीछे नकल उतारते हुए चलते थे। तो इन्हीं लोगों को अल्लाह ने क्या किया था, अल्लाह के रसूल ने शहर बद्र कर दिया था। कलमा पढ़ गया था इसलिए मारा नहीं, कहा निकल जाओ वापस नहीं आना। तारीखें हैं भाई सुन लो जिसको नहीं पता, अल्लाह के रसूल ने निकाल दिया और पहले दोनों दौर में उनको वापस नहीं लाया गया था। क्यों? सब जानते थे कि अल्लाह के रसूल ने निकाला है, जो अल्लाह के रसूल से रांदे दरगाह कर दिया जाए। समझ में आ गए? बस इतना जुमला काफी है, बाकी नतीजे खुद ही लोग निकालते रहेंगे। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस हर तरफ दे वजरा खल्फहु कमा यरा मिन बैन यदे, जैसे वो सामने देखता है बिल्कुल ऐसे वो अकब, यानी हर तरफ। यहां तक है ना बात, मतलब क्या है? हर तरफ देखता है, आज देख रहा है या नहीं देख रहा, सामने हो या ना हो, हम नहीं देख रहे ना, वो तो देख रहा है। इमाम की अलावात ये, इमाम की अलावात ये, इमाम की अलावात ये। दो सिफत में बात कर लेती है आज, बाकी पे कल कुरान से हवाला दे देते हैं दो सिफत का, कि कहा ये मासूम ने बताया। दो सिफत ले लीजिए, आलमुन्नास अशजउन्नास, इंसानों में सबसे बड़ा आलिम होगा। अब जो मतलब देखे जा रहे हैं बस देखे, आपसे इल्तिजा है जाया ना जाने दीजिएगा ना, और भूलिएगा भी नहीं। ऊंग ऊंग नहीं आ जाए किसी को, एक दो आदमियों को ऊंग आ जाती है, मैं ऊपर से देख रहा होता हूँ। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब आइए सूरह बकरा 247वीं आयत, अगरचे के इस आयत पे हमने अशरा पढ़ा है पूरा, कभी जिंदगी रही इंशाल्लाह आपको बताएंगे तफसील से वाकया इस वाक्य की, अभी भी कुछ ना कुछ तो बता ही देंगे। लेकिन बहरहाल ये बड़ा अजीब व गरीब वाकया तारीख पर हावी है, हर जमाने में इसकी मिसाल है हर जमाने में। इन्नल्लाह अस्तफाहु अलैकुम वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म वल्लाहु युती मुल्कहु मय्यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह ने, बेशक अल्लाह ने तालूत को, किसे? तालूत को तुम पर फजीलत दी है, बुजुर्गी दी है। इन्नल्लाह अस्तफाहु अलैकुम, क्यों बुजुर्गी दी है, क्यों फजीलत दी है? जरा सा पस मंजर आयत का बताना पड़ेगा ना, जरा सा बता दे। हमने कहा कि बड़ी तफसील है, मसला सिर्फ इतना सा है कि जालूत का जमाना है। बनी इसराइल उस जमाने के मोमिन, जो कुरान ने जैसे कहा ना अन्नी फज़लतुकुम अला आलमीन, उस जमाने में तुम्हें हमने फजीलत दी थी, वही थे उस वक्त बनी इसराइल। तो वो जालूत हाकिम था, मर्दों को मार दिया जाता था, कत्ल कर दिया जाता था, या गुलामी में लेके, या अहराम मिस्र जो बने वो गुलामों ने बनाए, बनी इसराइल से बनवाते थे वो, रस्सियों से बांध बांध के पत्थर खींच खींच के ले जाओ ऊपर, वो इस्तेहसाल होता था बेचारों का। उस वक्त बेचारे थे, आज नहीं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। तो वो जनाब उनके साथ बुरा चलता, सदियाँ गुजर गई, कई सदियाँ गुजर गई, बड़े परेशान, क्या करें। नबी के पास आए अपने ज़माने के नबी जनाब शमोइल, और कहीं अलिफ से है जनाब इश्मोइल, कोई मसला नहीं, ठीक है ना, बता दिया मैंने दोनों तरफ जनाब शमोइल या जनाब इश्मोइल। नबी तो होता था ना, 70,000 नबी हैं उनमें बनी इसराइल में जो गुजरे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और एक वक्त में कई कई नबी होते थे। यहाँ जहाँ जालूत और तालूत का मार्का है, तो ये फ़लस्तीन का इलाका कनान का, उस वक्त ज़रा सरहदें कुछ और किस्म की थी, शाम का कुछ इलाका शामिल है, फ़लस्तीन है, कनान है, बहरैन है, ये सारे इलाके शामिल हुआ करते थे। सरहदें तो आप जानते हैं बदलती रहती हैं, तो वो जनाब इलाका वही है, सहरा सीना का इलाका, ये सारे इलाके हैं। तो इनकी हालत ये है, डेढ़ दो सदियाँ गुजर गई, तीन सदियाँ गुजर गई, मार खाते खाते आए जनाब शमूएल के पास, और आने के बाद का दुआ कीजिए कोई सरदार अल्लाह हमें भेज दे, अपनी बारगाह से कोई सरदार भेज दे, कोई रहबर भेज दे जिसकी सरबराई में हम लड़े दुश्मनों से। तो उसने कहा भाई ऐसा ना हो कि वो सरदार बन जाए तुम उसको मानो ही नहीं। कहा क्यों नहीं मानेंगे? जबकि ये हो रहा है हमारे साथ, ये सूरह बकरा की 239वीं आयत से लेकर चलेंगे तो आगे 48-49 तक ये पूरा वाकया आपको मिल जाएगा। ये भी इशारा मैंने दे दिया आपको। क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? अच्छा लड़ोगे, ठीक है बात करता हूँ, दुआ की माबूद मेरी कौम। अच्छा आप ये देखिए कि नबी के पास भी दुआ कराने आते थे, उसकी मानते नहीं थे। आज भी हमारे पास आते तावीज़ दे दो, अब मैं तावीज़ गंडे वाला मौलवी नहीं हूँ, मेरे पास क्यों आ रहा है तावीज़ लेने भाई? अच्छा मेरे पास भी बड़े कर्तव्य तावीज़ देने के हैं, क्यों नहीं है? देता हूँ, बिठाता हूँ, मैं यही करना ही करना। लेकिन ये फजर के बाद, फजर की नमाज के बाद मुँह उतर गया, या तो अपना इतना रोना रो रहा था, यूं हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जैसे ही मैंने कहा फजर की नमाज का करूँ, कोई दोपहर वाला बता दें। तो अपनी ही मुश्किल हल करने के लिए तो सुबह नहीं उठ सकता, दो रकात नमाज पढ़ने, बताइए क्या हालत है कौम की, सबकी जगह का यार। तो मैंने मेरे पास तो जितने नुस्खे ना भाई, ये फजर के बाद वाले हैं, दिन के हैं ही नहीं, लिहाजा कहीं और चले जाते हैं, उसको ढूंढो जो दोपहर वाला हो। जब मैं 2 बजे सो के उठूँ आराम से, नहा धो के नाश्ता वाश्ता करके तैयार होके खुशबू वशबू लगा के बाहर निकलने लगूँ, और वजीफा भी छोटा हो 3-4 मिनट वाला, ये लंबे लंबे नहीं देते ना, 1.5-2 घंटे वाले भाई वजीफे, समझ में आ गई बात? तो ऐसे लोग थे हमेशा, इंसानी फितरत यही इसी तरह काम कर रही है सब जगह यही है। तो जनाब आते थे दुआ के लिए, जो कहते हैं दम दुरूद के लिए, बीमार हो गया जरा दम कर देना, और पैगंबर बेचारा वो भी कर देता, जाओ भाई चलो उसको दुआ हुआ कर दो, चलो जब हो गया जाओ छुट्टी, अब आ रहे दुआ कर दो हमारे लिए, दुआ कर देते हैं परवरदिगार की मुश्किल हल कर दे, भेज दे। अल्लाह ने दुआ सुन ली, अब ये पस मंजर बता रहे हैं, दुआ सुन ली, मान लिया भाई आ जाओ, कौम को जमा कर लिया, कौम खुश, मिल गया सरदार, मिल गया जिसकी सरबराही में लड़ेंगे, आजादी हासिल करेंगे, जालूस से या यूं कह लीजिए फिरौनियों से, जालूस से निजात मिलेगी, जमा हो गई कौम। शमूएल ने कहा मुबारक हो, अल्लाह ने तालूत को तुम्हारा सरदार मुकरर कर दिया, तालूत को। तालूत का नाम सुना सबके मुंह बिगड़ गए, तालूत। अब आज की अगर जबान में को देखिए, औरंगी का रहने वाला कस्बे का हमारा सरदार बना दिया, हम डिफेंस वाले, समझ गए? मतलब फिक्र बता रहा हूं, फिक्र, फिक्र इलाके के नाम पे ना जाइए, मैं फिक्र बता रहा हूं। हाँ इतने बड़े बड़े खानदान हमारे, और ये मजदूर, मजदूर का बेटा, गरीब आदमी का बेटा, ये हमारा सरदार, नहीं हम नहीं मानते इसको। अब ये आयत आई कि सरदारी के लिए मालदार होना नहीं, जागीरदार होना नहीं, सरमायादार होना नहीं, कारखानेदार होना जरूरी नहीं, बड़ा खानदान होना जरूरी नहीं, बिरादरी का बड़ा होना जरूरी नहीं, कहीं नहीं। दो अलामतें बताई कुरान ने कि कौन है तुम्हारी इमामत के लायक, कौन है तुम्हारी रहबरी के लायक। इन्नल्लाह अस्तफाहु अलैकुम, नबी उन्हें अल्लाह का हुक्म बता रहा है, ये जो तुम बातें कर रहे हो ये नहीं है, परवरदिगार फरमा रहा है कि मैंने इसी तालूत को तुम्हारी पूरी कौम पे बुजुर्गी दी है। किस सबब से? इसमें दो खूबियां हैं, एक ये आलिम है, एक ये बहादुर है। इन्नल्लाह अस्तफाहु अलैकुम ज़ादहु बस्तन फिल इल्म वल जस, ये तुम सबसे ज्यादा है जिस्मानी ताकत में भी, यानी शजात में भी और इल्म में भी। तो मैयार तुम्हारी दौलत नहीं है, मैयार तुम्हारा सोशल स्टेटस नहीं है, मैयार तुम्हारी बिरादरी नहीं है, मैयार तुम्हारे पीछे चलने वाला हुजूम नहीं है, मैयार है शजात और इल्म। ये दो चीजें इल्म है। वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है अपना मुल्क अदा कर देता है, अल्लाह जिसे इस काबिल पाता है। नहीं मानी चले गए, चले गए। जाने के बाद क्या करें, आपस में तो एक है ही नहीं, जब मीटिंग होती है माशाल्लाह लठम लठा शुरू, क्योंकि सारे लीडर है ना अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बात नहीं कर रहा, बनी इसराइल की बात कर रहा हूं, सलावत भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हाँ भाई नाजुक मिजाज लोग हैं, बुरा मान जाएंगे। मौलाना ने हमें कह दिया, भाई मैं आपको कह ही नहीं रहा, मैं तो बनी इसराइल को कह रहा हूं, मीटिंग बुलाओ। और जरा वो आपस के मसले अल्हम्दुलिल्लाह इतने थे उनके, बनी इसराइल की सब सरदार थे, लेकिन अब माने कौन, क्योंकि सब सरदार। अच्छा बोलना भी जरूरी है, ये बोल रहा है, अगर मैं नहीं बोला तो मेरी सरदारी खत्म, यानी मेरी लीडरी अपनी लीडरी साबित करने के लिए उल्टा सीधा बोलो मगर बोलना है, ज्यादा शरीफ आदमी भाग गए। भाई ये सारे बोलने वाले माशाल्लाह, अब इतने सारे लीडर आ गए, 1,500-2,000 हो गए माशाल्लाह लीडर बनी इसराइल में, लिहाजा भागो भाई, अब अपनी ज़रूरत ही नहीं रही इनको, समझ गए बात। तो ये हुआ, अब चंद दिन तक जब आपस में लट्ठम लट्ठा होता रहा, फिर तय पाया कि भाई मान लो उसी को, क्योंकि एक दूसरे को तो मानते नहीं हो तुम, उसी को लियाओ पकड़ के, गए भाई मान लिया भाई, क्योंकि बार बार जाते थे नबी कहते थे नहीं अल्लाह ने भी उसी को रखा है, तुम्हारी नाक रगड़ने के लिए उसी को रखा है, मानो, मानना पड़ा। अब अलामत मतलब मालूम हो गई। अब देखिए इल्म की बात, कैसा इल्म है तालूत के पास। यहाँ तक मैं आपको बड़ा खुश लेकर आया हूँ ना, अब एक मतलब देने जा रहे हैं जो अपने आपसे वादा किया है, फरामोश इंशाल्लाह आपसे कभी भी नहीं होगा ये मतलब जो अब देने जा रहे हैं आपकी खिदमत में, आपके सुपुर्द करने एक मानी जा रहे हैं, एक मफहूम जा रहे हैं। जमा कर लिया तालूत ने कौम को, अब चलो भाई नारे लगाते हुए हमला करने, ऐसा किया नहीं, तालूत इतने सादा थोड़ी हैं कि हुजूम देख के बहक जाए, ओ पब्लिक बहुत आ गई भाई, अब ले चलो इनको सड़कों पे। पता नहीं कितनी बार ये मंजर आंखों से देखे कि जब वक्त पड़ा तो अकेले खड़े भाई, या एक दो और खड़े, बाकी सब गाय, पता ही नहीं किसी का सड़क कहाँ गए, अरे कहाँ चलेगा भाई, अभी तो इतना शोर कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, क्या हुआ क्या। तो ऐसे नहीं होता, जब तक तरबियत ना हो लोगों को मत लेकर आओ ऐसे। तो तालूत ने पहले तरबियत समझाया कि इतना आसान नहीं है साम्राज्य ताकत से लड़ना, साम्राज्य ताकत है ना उस वक्त की जालूत, इस्तेमार से लड़ना कोई मामूली काम है, इतना आसान काम नहीं इसे लड़ना, ज्यादा पहले जहनी तौर पे तैयार हो जाओ, जिस्मानी तौर पे तैयार, लश्कर तैयार हो रहा, और जब लश्कर तैयार हो गया तो इल्म है, इल्म तालूत के पास, जानते हैं कि खास आदमी है, खास जो जालूत को मारेगा, बता दी गई है ना निशानियां, निशानियां बता दी गई हैं, जानते हैं ये खास आदमी है जिसको मारेगा। सारी कौम को जमा किया, जनाबे दाऊद के वालिद अपने सारे बेटों के साथ पहुंच गए जंग लड़ने के लिए, सबसे छोटा बेटा दाऊद इसको छोड़ दिया, कहाँ छोड़ दिया, चलो जानवरों की देखभाल करो, मवेशियों की, भेड़ बकरियों की, हालांकि रोते रहे कि मुझे भी ले चलो जंग पे, नहीं छोटे हो तुम 12-13 साल के, क्या करोगे जंग में जाके, बैठो दुबले पतले भी थे, बैठो यहां, बैठो यहां देखभाल करो। अच्छा अल्लाह ने दाऊदी तो आप जानते हैं ना तारीख में, और है बेमिसल है। तो जब ये आयात इलाही की तिलावत करते थे, चरिंद परिंद दरिंद सब इनके इर्द गिर्द जमा हो जाते थे, इसको कहते हैं लहन दाऊदी, ये लहन दाऊदी हुजूर के अजदाद में भी किसी का था, फिर सही। तो अब वो जनाब हुआ ये दाऊद को छोड़ दिया, वहां गए, पहचान ये थी कि जिसके जिस्म पर मूसा की जिरह फिट आ जाएगी, पूरी आ जाएगी, वही मारेगा जालूत को, ये पहचान थी, वही मारेगा जालूत को, जिसके जिस्म पर जनाबे मूसा की, जनाबे मूसा की जिरह कहां से आई थी भाई, वो ताबूत सकीना वापस आया था ना, अल्लाह का वादा था कि ताबूत सकीना वापस आ जाएगा, उस ताबूत सकीना में क्या थे, तबर्रुकात, जनाबे मूसा की जीरा, असा, तलवार, लिबास, जनाबे हारून का भी, ये सब कुरान की बात बता रहे, ताबूत सकीना का जिक्र कुरान में है, जिसको अलामत करार दिया था फतह की, वो ताबूत सकीना पे जब मजलिस कभी पढ़ेंगे तो फिर पढ़ देंगे आपको ताबूत सकीना क्या था और कहां गया था, कैसे वापस आया, वो जीरा पूरे लश्कर को पहना दी, किसी के भी पूरी, किसी की पूरी नहीं। पूछा इन भाइयों को, दाऊद के वालिद को, भाइयों को, इनको बुलाओ, ये खानदान के लोग हैं, कहाँ हैं, बुलाओ, बाप को पहनाई, बेटों को पहनाई, सेहतमंद लोग हैं, किसी को नहीं आई। लेकिन जानते हैं तालूत कि मामला यही है, कहिए बताओ किसी को घर पे छोड़ के आए हो क्या। मैंने कहा ना कि नतीजा जब आपको दूंगा ना फिर देखिएगा, किसी को छोड़कर आए हो, घर पे छोड़कर आए हो, कहा कि हाँ बाप ने कहा छोड़कर, तो वो तो छोटा है 12-13, इनसे भी छोटा, इनके नहीं आ रही उसके कहाँ से आएगी, क्योंकि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम माशाल्लाह कदो कामत, उनकी सेहत सब से अम्बिया में पूरा तफसील लिखिए, लहीम शहीम इंसान थे, और सीना भी बाकायदा बहुत चौड़ा था आपका, कद भी आपका ज्यादा था, कहा कि इनको नहीं आ रही, कहा कि बुलाओ उसको। अब भाई फैल गए, भाइयों को, वैसे ही वो बिरादरा ने यूसुफ वाला केस था, दाऊद की आवाज़ की वजह से दाऊद से जलते थे, हसद कर देगा दाऊद, अरे कहने सरदार वो कहाँ से आएगा, वो 12-13 साल का, वो जंग भी करना नहीं जानता, वो तो भेड़ बकरियां चराता है, कहा बुलाओ उसको, भेड़ बकरियों को छोड़ो तुम, उसको बुलाओ जिसको छोड़ कर आयो। गए भाई कासिद गए, वो देखा दाऊद खेल रहे, उन्हें गुलेल हाथ में होती थी इनके, गुलेल से ना शिकार भी कर रहे हैं, और जनाब वो परिंदे भी मवेशियों को भी देख रहे, कहा चलो भाई बुलाया है तुम्हें, किसने बुलाया, कहा तालूत ने, सरदार ने, तो भाई तो नहीं लड़ेंगे, कहा नहीं नहीं सबको पता है चलो हमारे साथ चले। तो गोफन, गोफन कहते हैं जिसमें वो पत्थर रखते हैं ना गुलेल में मारने के लिए, गुलेल में रख के मारने को गोफन कहते हैं, थैला सा बगल में लटका देते हैं, वो गोफन में लेके चले, वो गुलेल साथ लेके चले। आगे चले तो किसस अंबिया की बात बता रहे हैं आपको, एक पत्थर पैरों के नीचे आ गया और कहते हैं दाऊद मुझे रख लो, मैं बड़े काम का हूं। जनाबे दाऊद ने उठाया, गोफन में डाल दिया, चल भाई तू आ जा। थोड़ा आगे गए, एक और आया, कहते मुझे रख लो, मैं भी बड़े काम का, वो मैमने को मारेगा, मैं मैसरे को मारूंगा, तू भी आ जा भाई, रख लिया। और आगे गए तीसरा, कहा मुझे तो उठाओ, मैं ही तो मारूंगा जालूद को, आपने वो तीसरा पत्थर भी उठा के रख। अब जब पहुंचे लश्कर में तो लश्कर तो हंस रहा है, भाई ये क्या लिया है भाई, ये कौन सा आदमी आ गया, 12-13 साल का बच्चा चला आ रहा है गुलेल हाथ में लिए। लेकिन तालूत नहीं, तालूत तो जानता है ना राजों को, तालूत जानता है अल्लाह ने उसको इल्म भी दिया है, बहादुरी भी दिया, सरदार बनाया है, पेशवा बनाया, इमाम बनाया तालूत को, वो जानता है, वो नहीं हंसा, आओ बेटा मेरे पास, ये जिरा पहनो। अब सब हंस रहे कि इतनी चौड़ी जिरा, इतनी लंबी जिरा इसके कद के बराबर, और तालूत इस बच्चे को दे रहे कि पहनो, इसके बड़े भाइयों को नहीं, इसके बाप को नहीं है, पूरे लश्कर को नहीं आई, बड़े बड़े सिपाहियों को नहीं आई, इसको कहां से आएगी। लेकिन जब उस बच्चे ने वो जिरा पहनी तो सिमट के बिल्कुल फिट आ गई, यह तारीख, फिट आ गई जिरा। अब जब जंग शुरू हुई तो वही तीन पत्थर, एक पत्थर मारा मैं मना तबाह किया, दूसरे से मैं सरा तबाह किया, तीसरा सीधा जालूत की पेशानी तोड़ता हुआ निकल गया। अब सुनिए जो नतीजा देने जा रहा हूं आपको, अब समझ में आया, सुनो, अरबों का इल्म क्या था, अरबों का इल्म यह था कि पुश्त से किसी आदमी को देखते थे, अगर नाम भी नहीं जानते, कबीला बताते थे, खानदान बताते थे, सब बता देते थे कि ये फला कबीले का है, इसका बाप फला है, इसका दादा फला है, पुश्त से देख के, ये भी बड़ी बात, अगर चला जाए तो कदमों के निशान देख के बताते थे किस कबीले का है, इसकी ननियाल कौन सी है, इसकी ददियाल कौन सी है, ये भी ना हो तो अगर कोई काफिला रात को ठहरा हो, सुबह चला गया हो, तो ऊंट और ऊंटनियों का फुजला देखकर बताते थे कि रात को कौन सा काफिला ठहरा था, इनके साथ कितने ऊंट थे, कितनी ऊंटनियां थी, और अगर उस काफिले में कोई ऊंट काना यानी एक आंख का होता था तो कहते थे कि इस काफिले में एक ऊंट काना भी था। ये जादू नहीं था, जादू नहीं था, क्या था, इल्म, इल्म। चेहरा देखते थे नहीं आदमी का, फला कबीले का ही है, फला कौम का है, कदो कामत देख। तो इतना इल्म रखने वाले अरब, अब सुनिए, इतना इल्म रखने वाले अरब, सारी सीरतें, तारीखें आपने भी लिखी हैं हुजूर, हमने भी यही लिखा, आपने भी यही लिखा हुजूर, और मौलाए कायनात में सिनों साल का फर्क है कि नहीं है ना, कदो कामत का भी फर्क है, कदो कामत का भी फर्क है, सिनों साल का भी फर्क है ना, ऐसे ही है। बस शबे हिजरत 150 अफराद मुहासरा किए हुए, अपने अपने घरों की छतों पर से जासूस देख देख कर बता रहे हैं कि नहीं मोहम्मद बिस्तर पे, मोहम्मद बिस्तर पे, अरे भाई शख्सियत बदल गई थी तो कोई तो कहता आज बिस्तर पे मोहम्मद नहीं कोई और है। इसलिए मैंने आपको इतनी देर इंतजार कराया, इसलिए तालूत का वाकया पड़ा, बस ये मशीयत थी, यही तो वो शबे हिजरत का बिस्तर है जिसपे रात भर के लिए शबी बना दिया था अली को, कि वो सैकड़ों लोग यही समझते रहे कि मोहम्मद है, मोहम्मद है, मोहम्मद है। ये रास्ता जब खुला, जब चादर खींची, तो अंदर से मोहम्मद नहीं अली निकले। समझ में आ गई बात? अल्लाह 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 युति मुल्कहु मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है यानी जिसे इस काबिल पाता है उसे हुकूमत देता है, उसे मुल्क देता है। इल्म और शुजात, इल्म हो शजात ना हो जब भी कौम को मरवा देगा, बहादुर हो इल्म ना हो जब भी बेड़ा गर्क है, नहीं दोनों चीज़ें साथ होनी चाहिए। इल्म भी होना चाहिए और कुव्वत फैसला भी होना चाहिए, दिलेर भी होना चाहिए, बहादुर भी होना इंशाल्लाह। इत्मीनान रखें, मैंने कल भी खुशखबरी पे ख़त्म की थी ना मजलिस, अब भी खुशखबरी पे ख़त्म कर रहा हूँ, इत्मीनान रखें। हालात जैसे भी हों कुछ भी हों, अल्लाह का वादा, कल एक वादा बताया था ना, आज फिर एक वादा बता देते हैं। सूरह नूर में वादा किया अल्लाह ने, वाद अल्लाह लजीना मिनकुम वामिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुम लज़ी इर्तज़ा लहुम। अल्लाह का वादा है उन बंदों से जो ईमान लाए, जो मोमिन बंदे और अमले सालेह किया, कि ज़रूर बे ज़रूर रूए ज़मीन पे तुम्हें अपना वारिस बना दूंगा, खलीफा बना दूंगा यानी वारिस बना दूंगा। लज़ी इस्तखलिफन्नहु फिल अर्ज वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुम लज़ी इर्तज़ा लहुम वयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना। और तमकीन इक्तदार, इक्तदार दूंगा तुम्हें रूए ज़मीन पर, तमक्कुन दूंगा तुम्हें रूए ज़मीन पर, और जिस खौफ में तुम जिंदगी बसर कर रहे थे ना, वयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, उस तुम्हारे खौफ को अमन से सुकून से बदल दूंगा। किसके वादे पे भरोसा करूँ, वही कल वाली बात, किसके वादे पे भरोसा करूँ? इन लुटेरे डाकू स्मगलर इन सियासतदानों पे भरोसा करूं या अल्लाह के वादे पे भरोसा करूं? खुदा की कसम, हक के रास्ते में जो इंसान को तन्हाई मिलती है ना, दुनिया नहीं जानती, उस तन्हाई में भी एक लज्जत क्या होता है, एक लज्जत होती कि खुदा का शुक्र। लोग कहते ना अकेले खड़े हैं आप, तो उस वक्त वो बंदे खुदा शुक्र अदा कर रहा था कि खुदा का शुक्र मैं इनमें का एक नहीं, मैं इनमें का एक, मेरा शुमार इनके साथ में। ऐसे इंसान जितना अल्लाह का शुक्र अदा करे कम है, इसका मतलब अभी तक साबित कदम है, और अल्लाह ऐसे लोगों को आखिरी सांस तक साबित कदम रखे। इनमें का नहीं, इस हुजूम का नहीं, इनमें से एक नहीं, जरा से फायदे के लिए, जरा सी शोहरत के लिए, जरा से मनसब के लिए, जरा से ताल्लुकात बनाने के लिए कौमों के सौदे, जमीर के सौदे, दीन के सौदे। लीडर है, लीडर कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, लीडर। चलिए वहीं तक रखते हैं, उन्हीं लोगों तक रखते हैं, आप कहीं और ना चले जाइएगा। सारी बातें बनी इसराइल की कर रहा हूं, यूं समझ लीजिए, एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, यहां सब कुछ ठीक, यहां सब कुछ अच्छा। ये सारी बातें किसकी कर रहा हूं? बनी इसराइल, वहां होता था ये सब, यहां सब ठीक है माशाल्लाह, सब कुछ अच्छा है। ऐसे ईमानदार, ऐसे दयानतदार, ऐसे शरीफ, ऐसे अच्छे लोग, ऐसे रहनुमा दुनिया में कहीं है ही नहीं। मैं तो बल्कि दुआ करता हूं माबूद ये सारे के सारे अमेरिका को दे दे, इसराइल को दे दे, ये सब इतने अच्छे रहनुमा है ना, कितने अच्छे, सुबह से शाम तक चैनल पे बैठ के आप देख लें कैसे बातें कर रहे होते हैं अल्लाह रसूल की, ये सब उन्हें दे दे। برطانیہ کو، اسرائیل کو، امریکہ کو، ہمارا تو 74 سال لگے نا بیڑا غرق ہونے میں، اب یہ اتنے تجربے کار ہو گئے انشاءاللہ ان کا 74 دن میں ہی کام اتار دیں گے، 74 دن میں ان کا کام ہو جائے گا۔ تو یہ دعا کیا کرو پروردگار اتنے اچھے لیڈر سب کو دے دے، ذرا سے فائدے کے لیے شہر کھنڈر بن گئے، تباہ برباد ہو گئے، منہ میں ہڈی ڈال دی گئی خاموش، ہڈی بھی چوسی ہوئی، ہڈی بھی جھوٹی۔ یہ ہے تمہارا دین، یہ ہے تمہاری قوم کا درد، تمہارے دلوں میں قوم کا درد، یہ ہے ملت کا درد، یہ دعویٰ ہے قوم کی رہنمائیوں کا۔ خیر، یہ سب بنی اسرائیل میں تھا، یہاں سب اچھا ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر، ہے نا، امامت کے لیے۔ اب یہاں جہاں بات چھوڑی نا، یہیں سے اور صفات پہ بھی بات کریں امام کی، اور آگے لے کر چلیں گے بات کو، لیکن اب بس اب یہاں تک۔ ایک صفت کیا تھی؟ اسخناس، تمام انسانوں میں سخی ترین، سخی ترین، سخی ترین۔ مال لٹانا آسان ہے، جان لٹانا، یہ تو حاتم طائی نے بھی نہیں کیا تھا کہ اپنی جان دے دیتا کسی کے لیے، نہیں کیا نا۔ اسخناس کیا حاتم طائی بھائی، اچھا انسان، نیک انسان، میں اس کی برائیاں تھوڑی کر رہا، جب اللہ کے رسول نے اس کو برا نہیں کہا، ائمہ نے اس کو برا نہیں کہا، اس کا دین جو بھی تھا لیکن برا تو نہیں کہا نا اس کو، جب برا تو میں کیوں برا کہوں، لیکن میں تو موازنہ کر رہا ہوں۔ یہ حاتم طائی، حالانکہ موازنہ کرنا بھی بنتا نہیں ہے میرے حساب سے، لیکن سمجھانے کے لیے بچوں کو، یہی تھا نا، اپنے مال میں سے کچھ مال دیتا رہتا تھا۔ امام کون؟ اپنے مال میں سے کچھ مال نہیں، اپنا سارا مال، سارا مال دے دے اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام پہ اپنا سارا مال دے دے اللہ کے نام پہ، اور جب مال میں سے کچھ نہ رہے تو جگر کے ٹکڑوں کو دینا شروع کرے۔ ایسے ہی ہے نا، مال ختم، اللہ کے نام پہ جگر کے ٹکڑے۔ میں ایسے تھوڑی بات کر رہا ہوں، آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں نا، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ، اے حسین میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے کیا زکوٰۃ ادا کرتے دیکھا حسین کو، بتائیے جو آپ گواہی دے رہے، کیا دیکھا آپ نے، کون سی زکوٰۃ دیتے دیکھا بھائی؟ لیکن آپ کہہ رہے ہیں گواہی دیتا ہوں، سمجھ میں آیا؟ مال دنیا کی بات تھوڑی ہو رہی ہے یہاں، جب مال دنیا سے سب کچھ ختم ہو گیا تو حسین نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو قربان کرنا شروع کیا۔ کل میں نے تمہید باندھی تھی آج کے مصائب کے لیے، یہ سارا فیصلہ تو شب عاشور ہی ہو گیا تھا، جو جانے والے تھے وہ چلے گئے۔ 9 محرم کو جب شب عاشور کا آغاز ہوا تو بس یہ جو تھے نا، یہ تھے حسین، جب شب عاشور خیموں کے گرد پھر رہے تھے، احوال پرسی کر رہے تھے، تو ہر خیمے کا عجب ماحول دیکھا تھا۔ مائیں اپنے بچوں سے کہہ رہی ہوں گی کہ بیٹا کس مشکل میں آ گئے، کاش نہ آئے ہوتے، کیا تمہیں ہی چھوڑ دیتے مدینے، جان بچ جاتی تمہیں۔ نہیں 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 نہیں، ایک خیمہ ایسا، حسین جس خیمے کے پاس سے گزرتے تھے مائیں اپنے بچوں کو شہادت کے لیے تیار کر رہے۔ اسی طرح میرا اور آپ کا مولا حسین جب اپنی بہن کے خیمے کے پاس سے گزرا تو ٹھہر گیا، بہن کی آواز آ رہی ہے گفتگو کی، اپنے شہزادوں سے گفتگو کر رہی، خیمے کا منظر عجیب ہے، ماں بیٹھی ہے، ایک زانو پہ محمد کا سر ہے، ایک پہ اون کا سر، اور جیسے کہ ماؤں کا انداز ہوتا ہے نا، اپنے ہاتھ سے، اپنی انگلیوں سے بچوں کے بالوں میں کنگھی کر رہی، زلفیں سوار رہی ہے اپنے بچوں کی، اور ثانیہ زہرا اپنے بچوں سے کہتی جا رہی ہے، میرے بچوں मालूम है ना ये इतना बड़ा लश्कर क्यों जमा हुआ है? ये तुम्हारे मामू को कत्ल करने के लिए जमा हुआ है। देखो, अगर तुम्हारे बाबा होते ना तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते, लेकिन वो नहीं। बस अब सुबह मेरी लाज रख लो और सबसे पहले मामू पे कुर्बान हो जाओ। और दोनों बच्चे अपनी मादे गिरामी का एक एक हाथ थाम कर कहते, मादे गिरामी इत्मीनान रखिए, हम अब्बास मामू अब्बास के शागिर्द हैं, सुबह होने दीजिए। देखिए देखिए, बस इजाज़त दिलवाना आपका काम होगा, मैदान जंग में बद्र उहद के नक्श निगार खींच देना हमारा काम है। खुश हो गई माँ, खुश हो गई जैनब, अपने बच्चों की पेशानियों के बोसे लिए। मेरे बच्चों, तुमने मुझे खुश कर दिया। अच्छा बस देखो, दो तीन नसीहतें कर रही हूं, इसका ख्याल रखना। देखो पहली बात, खबरदार नहर का रुख ना करना। मेरे भाई के बच्चे प्यासे हैं, अली असगर प्यासा है, सकीना प्यासे, नहर की तरफ ना जाओ। अगर पानी की तरफ गए दूध नहीं बख्शो। मादरे ग्रामी इत्मीनान रखिए, हम पानी की तरफ आंख उठा कर भी नहीं देखे। और देखो बेटो, मेरे बच्चों, साथ रहना, दोनों मिलके रहना, मिलके रहोगे ताकत बढ़ी रहेगी, जुदा मत हो जाना। और तीसरी नसीहत कहती है, मेरे बच्चों, कोशिश करना पिसरे सात के खेमे तक पहुंच जाओ, इसे कत्ल कर दो। ये कत्ल होगा, सरदार है, जंग खत्म हो जाएगी, मेरे भाई की जान बच जाएगी। हुसैन अश्क भरी आंखों के साथ आगे बढ़ गए। ये सारी गुफ्तगु, कैसा वक्त आ गया, कैसा वक्त आ गया। गोद के पाले कत्ल होने की तैयारी कर रहे हैं। सुबह हुई, एक के बाद एक की शहादत की खबर आती है, एक के बाद एक की आती है, और ज़ैनब इंतजार कर रही है कि कब औन मोहम्मद के लाशें आएंगे। और किया, कैसी माएं हैं करबला की, कब आएंगे इनकी लाश। आखिर जोहर का हंगाम भी गुजर गया, एक बार खेमे के सामने से दोनों बच्चे गुजरे, फिजा को भेजा, फिजा जरा औन मोहम्मद को तो बुला कर ला। दोनों बच्चे पहुंचे, देखा माँ के चेहरे पे गुस्से के आसार, गैस के निगाहें जमीन में गाड़ दी। इससे पहले के सानिया जहरा कुछ कहें, दस्त बस्त हाथ जोड़ लिया, मादरे गिरामी हम पे गुस्सा मत हो जाएगा, गुस्सा मत। पूछा ज़ैनब ने, अब तक जिंदा हो? मैंने कहा था कि सबसे पहले जाना, क्या जब मेरे भाई पे तलवार चल जाएगी फिर जाओगे मैदान? क्या मादरे गिरामी गुस्सा ना करें, हम सुबह से कितनी बार जा चुके हैं मामू जान की खिदमत पे, लेकिन मामू हमें इजाजत नहीं देते। गुस्सा कम हो गया सानिया दर, अच्छा तुम्हें इजाजत मिलेगी, फिजा जरा माजाए को मेरा सलाम तो कह दे। हुसैन खेमे में आए, मंजर देखा, इससे पहले कि सानिया जहरा कुछ फरमाए, हुसैन फरमाते हैं, ज़ैनब औन मोहम्मद के मैदान में जाने की इजाजत नहीं मांगना। कभी ऐसा हुआ है कि कोई भाई अपने हाथों से अपनी बहन का घर उजाड़ दे, अपनी बहन की गोद उजाड़ दे? का भैया ऐसे ना कहो, ऐसे ना कहो, मेरी मजबूरी भी तो देखो। अगर कयामत के दिन मेरी माँ जहरा ने मुझसे सवाल कर लिया, ज़ैनब अपने औन मोहम्मद को बचा लिया, मेरा हुसैन कत्ल कर दिया गया। भाई ना रोको, भाई ना रोको, ये तो मामूली सा सदका है तुम पर, ज़ैनब को ये सदका देने दो। इस तरह इजाजत ली है। हुसैन ने दोनों शहजादों को खुद सवार कराया, एक को हुसैन ने, एक को अब्बास। जब दोनों शहजादे मैदान की तरफ चले तो अब्बास ने हसरत भरी निगाहों से देखा और कहा, मेरे शहजादों ध्यान से। मुस्कुरा के कहा, मामू जान आप ही के तो शागिर्द हैं। मैदान में आए, ललकारा, रजस बड़ी, सुनो, जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो सुनो, हम जाफर तैयार के पोते और हैदर कर्रार के नवासे, जिसने उन्हें जंग करते नहीं देखा, आओ हमारे सामने। ऐसी रजस पड़ी कि अच्छे अच्छों के पित्ते पानी हो गए। जो आता था, किसी को बड़ा भाई जहन्नम रसीद करता था, किसी को छोटा भाई, चिल्ला कर पिसर साद ने कहा ये लश्कर ख़त्म कर देंगे ऐसे पूरा, एक साथ हमला करो। ज़ैनब के शहजादों पे पूरा लश्कर टूट पड़ा, लेकिन शहजादों ने भी ऐसा हमला किया कि लड़ते हुए पिसर साद के खेमे तक पहुंच गए। वो मलून खेमे की पुश से निकल कर भागा, चिल्लाता जाता है दो बच्चे तुम्हारे काबू में नहीं आते। भागता वो लश्कर कहता है दो बच्चे नहीं, दो नौजवान नहीं, जरा इनके लड़ने का अंदाज तो देख, ये हैदर कर्रार के नवासे हैं, जाफर तैयार के पोते हैं। भागते भागते कहते अच्छा ऐसा करो, करीब जाके नहीं लड़ सकते तो दूर से इन पर तीरों की बारिश करो। अब दोनों शहजादों के सामने कोई नहीं, तीरंदाजों ने चारों तरफ से घेरा, दूर से तीर बारान। अब जो तीरों की बरसात हुई, बच्चों के सामने तो कोई नहीं, कहां तक अपने आप को तीरों से बचाते। कुछ ही देर में जब तीरों से छलनी हुए तो पिसर साद ने हुक्म दिया कि जाओ इनको एक दूसरे से जुदा करो, लश्कर पे लश्कर, दस्ते पे दस्ते, रिसालों पे रिसाले हमला आवर हुए। बहुत कोशिश की भाइयों ने साथ रहने की, साथ ना रह सके। ऑन मोहम्मद को, मोहम्मद ऑन को आवाज देता रह गया। दोनों भाई एक दूसरे से जुदा हुए। पहले छोटा भाई गिरा जख्मों से चूर होकर, आवाज दी भैया मेरी खबर ले, लेकिन वो कैसे जवाब दे, वो तो खुद जख्मों से चूर है। जब बड़ा भाई गिरने लगा, आवाज दी हुसैन को, या खाला हो अदरिकनी, ए मामू जान हमारी मदद को आइए। बस ये आवाज सुनकर हुसैन दौड़े, अब्बास, अली अकबर, फिजा ने खेमों में खबर दी, बीबियों आओ जमा हो जाओ, सानिया जहरा के खेमे में जैनब के लाडले आ रहे हैं। जैनब ने खबर सुनी, सजदे शुक्र में गई, माबूद इस कनीज की ये कुर्बानी कबूल कर ले। बस सदा दी गई, खेमे पे सदा हुई, इंतजाम किया गया, एक को हुसैन, दूसरे को अब्बास आगोश में लिए दाखिल हुए, फर्श पे लिटा दिया गया। जैनब ने देखा अभी बच्चों में कुछ जान बाकी है, फिजा से कहा, फिजा ऐसा इंतजाम कर, ऐसा इंतजाम कर कि मैं अपने बच्चों से कुछ बात कर लूं। इंतजाम हुआ, मंजर वही शबे आशूर का, जैनब दरमियान में बैठी है, एक हाथ मोहम्मद के सीने पर, एक ओन के सीने पर, बड़े इत्मीनान से कहती है मेरे शहजादों किस हाल में हो, मेरे बच्चों किस हाल में हो। बड़े भाई ने आंखें खोली, आंखें खोल कर कहता है मादरे गिरामी अल्लाह गवाह है, हमने पानी का रुख भी नहीं किया, हमने निगाह उठा कर भी पानी की तरफ नहीं देखा था, आपने दूध तो बख्श दिया था ना। छोटा भाई कहता है मादरे गिरामी हम पिसरे साथ के खेमे तक पहुंच गए थे, मगर वो मलून पुश्ते खेमा से निकल के भाग गया, आप राजी तो हो गई, आपने दूध तो बख्श दिया। अरे जैनब असर आशूर के बाद कभी हुसैन बनी, कभी अब्बास बनी, कभी हैदर कर्रार बनी, सब कुछ है जैनब, लेकिन जैनब माँ भी तो है, ओनो मोहम्मद की माँ भी तो है। अपने बच्चों की ये जो मासूमाना गुफ्तगू सुनी, जैनब के जब्त के बंधन टूट गए, कभी सर मोहम्मद के सीने पर पटक दी, कभी ओन के सीने पर पटकती थी, मेरे शहजादो मेरे लाडलो मैं तुमसे राजी हो गई, तुमने मुझे मेरी माँ के सामने सुरखरू कर दिया, जाओ मैंने तुम्हें अपना